नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। ये मार्च 1984 का है
जी।
ये वो महत्वपूर्ण निर्देश है जो पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, आप जानते हैं, गायत्री परिवार के संस्थापक, उन्होंने दिए थे
हाँ बिल्कुल।
अपनी सूक्ष्मीकरण साधना से ठीक पहले। ये उन्होंने अपने सभी लोक सेवी, समयदानी, मतलब जो समर्पित कार्यकर्ता थे, उनको दिया था
जी। ये बहुत महत्वपूर्ण समय था और ये निर्देश भी उतने ही महत्वपूर्ण थे।
और दिलचस्प बात यह है कि गुरुदेव ने खुद ये पत्रक बांटा था और सबसे कहा था कि भाई इसे रोज पढ़ो और जीवन में उतारो।
हाँ, रोज सिर्फ पढ़ना नहीं, उतारना।
बिल्कुल, इसमें असल में यही बताया है कि कार्यकर्ताओं को अपना सोचना, अपनी जीवन शैली वो कैसी रखनी चाहिए, खासकर जब लक्ष्य इतना बड़ा हो, युग परिवर्तन।
हाँ, युग परिवर्तन जैसे विराट लक्ष्य के लिए तैयारी भी वैसी ही चाहिए थी।
तो चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को समझते हैं जरा।
जी जरूर।
सबसे पहली बात जो गुरुदेव ने साफ की वो ये कि भाई ये जो युग परिवर्तन की योजना है ना, ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
उन्होंने कहा कि ये तो एक दिव्य सत्ता की प्रेरणा है। लिखने वाली उंगलियां, कलम, कागज, ये सब तो बस माध्यम है।
सही कहा। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है। वो कार्यकर्ताओं को सिर्फ सहयोगी नहीं मानते थे।
अच्छा,
वो उन्हें अपने अंग अवयव कहते थे।
जैसे हाथ पैर शरीर के हिस्से होते।
हाँ, उनका मानना था कि इन सब समर्पित लोगों की मिलीजुली शक्ति ही इस योजना को आगे बढ़ाएगी।
तो असल जिम्मेदारी इन्हीं निष्ठावान कार्यकर्ताओं की थी, करने वाले वही थे।
मतलब प्रेरणा ऊपर से,
हाँ,
पर काम करने का भार कार्यकर्ताओं पर।
बिल्कुल,
वो गुरुदेव के ही हाथ पैर थे एक तरह से।
हाँ, और इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि भाई साधन कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, इसकी चिंता मत करो
जी। ये चिंता छोड़ दो,
ये बोझ उस दिव्य सत्ता पर छोड़ दो जिसने ये काम सौंपा है।
हाँ,
उनका सारा जोर इस बात पर था कि कार्यकर्ताओं को बस एक चीज देखनी है कि कौन ज्यादा मेहनत और समर्पण करने में आ गए।
प्रतिस्पर्धा इसी बात की थी।
हाँ, कौन खुद को इस काम में पूरी तरह से लगा देता है।
और इसको समझाने की उन्होंने हनुमान जी का क्या खूब उदाहरण दिया।
हाँ, वो तो अद्भुत है।
गुरुदेव याद दिलाते हैं कि हनुमान जी शायद योग्यता में दूसरों से कम रहे हों, पर जब वो सच्चे मन से, पूरे समर्पण से राम जी के काम से जुड़े
तो कमाल कर दिया।
तो वही साधारण समझे जाने वाले वानर ने असाधारण काम कर दिए।
राम लक्ष्मण को कंधे पर उठाना, समुद्र लांघना, लंका जलाना, पहाड़ उठा लाना, तो मतलब ये है कि सच्ची निष्ठा और पूरा समर्पण हो तो व्यक्ति की तथाकथित योग्यता या पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती, वो बहुत आगे जा सकता है।
तो अपेक्षा यही थी कि हर कार्यकर्ता, वो चाहे कहीं से भी आया हो, हनुमान जैसा समर्पण दिखाए।
बिल्कुल, वही आदर्श था। अच्छा, तो इस समर्पण भाव के साथ साथ कार्यकर्ताओं से और क्या उम्मीदें थीं, उनकी जीवन शैली कैसी हो?
देखिए, पहली बात तो ये कि जिस लगन और समर्पण से वो घर छोड़कर आए थे, वो रोज बढ़ना चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए।
निरंतरता।
जी, निरंतरता। और साथ ही ज्यादा से ज्यादा विनम्र बनना, दूसरों को खुद से बड़ा मानना और स्वयं सेवक होने पर गर्व महसूस करना। ये नहीं सोचना कि थक गए या आराम चाहिए, एक तरह से अहर्निश, मतलब दिन रात समर्पण का भाव।
पर एक सवाल मन में आता है, इतना गहरा समर्पण और साथ में पूरी विनम्रता, क्या ये हर पल संभव है, खासकर जब आप इतने बड़े काम का हिस्सा हो?
ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और शायद गुरुदेव इसे एक उच्चतम आदर्श की तरह रख रहे थे जिसकी तरफ लगातार कोशिश करनी है।
अच्छा,
सबसे जरूरी था कि जो काम किया उसका अहंकार ना आए। सोचना ये था कि मेरा अपना प्रयास, मेरा अपना मन कितना ऊपर उठ सका, मेरी आत्मा कितनी साफ हुई।
आंतरिक प्रगति पर ध्यान।
हाँ बिल्कुल, वही उनकी अग्नि परीक्षा थी। बाहर क्या हुआ उससे ज्यादा अंदर क्या बदला, और सिर्फ अपनी नहीं, अपने साथियों की श्रद्धा और क्षमता को बढ़ाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी।
और इस आंतरिक प्रगति को बनाए रखने के लिए उन्होंने आत्मनिरीक्षण, मतलब सेल्फ एनालिसिस पर भी जोर दिया था, है ना?
हाँ, बहुत ज्यादा जोर दिया था। गुरुदेव ने कहा कि रोज अपनी आत्मा से पूछो, जो मैं कर सकता था उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई?
रोज
रोज, कहीं आलस तो नहीं आ गया, अनुशासन तो नहीं तोड़ा? ये रोज का आत्मविश्लेषण इसलिए जरूरी बताया गया ताकि वो, क्या कहते हैं, नकली अहंकार या लापरवाही शख्सियत पर हावी ना हो जाए।
क्योंकि उनका मानना था कि ऊंचे काम ऊंचे व्यक्तित्व वाले ही करते हैं।
बिल्कुल स्पष्ट कहा उन्होंने, ऊंचे काम ऊंचे व्यक्तित्व ही करते हैं। तो ये रोज का पूछना व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया का हिस्सा था।
और ये व्यक्तित्व निर्माण इसलिए भी इतना जरूरी था क्योंकि मिशन तो लगातार बढ़ने वाला था।
निश्चित रूप से, गुरुदेव ने याद दिलाया कि ये मिशन का काम भविष्य में कई गुना बढ़ेगा और इसके लिए एकदम उच्चतम स्तर की तैयारी तत्परता चाहिए होगी।
ऐसी तैयारी कि अपना मन भी संतुष्ट हो जाए।
हाँ, कि लगे कि हाँ मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, कृतकृत्य हो जाए।
और व्यक्तित्व की ऊंचाई का मतलब कोई शारीरिक कद या पद तो था नहीं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुदेव के अनुसार व्यक्ति ऊंचा बनता है अपने श्रम से, अपने मनोयोग से, मतलब कितनी मानसिक एकाग्रता है, त्याग से और निरहंकारिता से। जैसे लक्ष्य ऊंचा है युग परिवर्तन, तो अपने व्यक्तित्व को भी उतना ही ऊंचा उठाना होगा। उन्होंने इसे अग्नि परीक्षा की वेला कहा।
एक निर्णायक घड़ी।
हाँ, एक निर्णायक क्षण जिसमें कोई पीछे न रह जाए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा।
तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो ये निर्देश पत्र असल में कार्यकर्ताओं से समर्पण, विनम्रता, लगातार कोशिश, रोज का आत्मनिरीक्षण और अहंकार बिल्कुल न रखने का, मतलब उच्चतम स्तर मांग रहा था।
जी, परिवर्तन जैसे महान लक्ष्य में अपना सबसे अच्छा योगदान दे सकें।
हाँ, और ये बात सिर्फ आध्यात्मिक लक्ष्यों के लिए ही नहीं है।
सही बात है, ये असल में किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए, चाहे वो सामाजिक हो या प्रोफेशनल हो या निजी जिंदगी का हो, उसके लिए जो अंदरूनी तैयारी चाहिए होती है, जो चरित्र निर्माण चाहिए होता है, उस पर रोशनी डालता है
कि बुनियाद में व्यक्तित्व का सुधरना कितना जरूरी है।
हाँ, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है।
और ये हमें सोचने के लिए एक गहरा सवाल भी देता है। आज के समय में हम अपने व्यक्तिगत या सामूहिक लक्ष्यों को पाने के लिए इस तरह की आंतरिक तैयारी, आत्मनिरीक्षण और समर्पण को अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं या दे सकते हैं।